नमस्कार दोस्तों, तो चांद की नई कहानी आपके सामने अब प्रस्तुत हो रही है। इस कहानी का नाम है धन्यवाद। दोस्तों, तो चांद जैसा कि आप जानते हैं क्लास वन में पहुंची और वो बहुत खुश थी अपने स्कूल से। और इस बार उसकी जब न्यू ईयर की छुट्टियां पड़ी यानी विंटर वोकेशन उनके यहाँ हुई थी, तो गर्मी की छुट्टियों की तरह स्कूल में इस बार उन्हें इकट्ठा करने के लिए नहीं बोला गया। सब बच्चे खुशी खुशी कोई नाना नानी के घर, कोई दादा दादी के घर जाने के लिए उत्सुक था। हर कोई अपने आप में एक दूसरे से बातें कर रहा था कि इस बार तो मैं नाना के घर जाऊंगा, इस बार मैं दादी के घर जाऊंगा। तो चांद अपने मम्मी पापा के साथ स्कीइंग करने के लिए गई। पापा के ही ऑर्केस्ट्रा में निर्देशक व शैलो बजाने वाले मित्र हाइदो साइतो का सिंघा के पहाड़ों पर एक खूबसूरत सा घर था। वे हर एक सर्दी उनके साथ ही उसी जगह बिताते थे। तो चांद जब बहुत छोटी थी तभी से स्कीइंग सीख रही थी। घोड़े से खींचने वाली स्लेज गाड़ी पर बैठकर स्टेशन से स्कीइंग करने की जगह तक पहुँचना पड़ता था। वहाँ चारों ओर सपाट बर्फ की सफेदी रहती थी। सारी पहाड़ियाँ, सारे ढलान बर्फ से बिल्कुल ढके रहते थे। बस कहीं कहीं बीच में सूखे पेड़ों की तने दिख जाते थे उनको। जिन लोगों के पास ठहरने के लिए श्री शायतो जैसे घर नहीं थे, उनके लिए वहाँ एक जापानी सराय यानी धर्मशाला भी बना हुआ था। तो लोग वहाँ जाकर ठहर लेते थे और बर्फ का लुत्फ या आनंद उठाते थे। एक पश्चिमी तरीके का होटल भी था, वेस्टर्न स्टाइल का एक होटल था। वहाँ पर ढेरों फॉरेनर्स आया करते थे। पर इस साल तोतो चान के लिए बात ही कुछ दूसरी थी। आखिर अब वह प्राथमिक शाला के पहले दर्जे में पढ़ने लगी थी। उसने थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी सीख ली थी और पापा ने उसको धन्यवाद यानी थैंक यू भी कहना सिखा दिया था। हर एक विदेशी जो तोतो चांद को बर्फ के बीच स्की पहने देखता ज़रूर उससे कुछ कहता। शायद वो ये कहते, कितनी प्यारी बच्ची है। तोतो चांद वह सब समझती नहीं थी, पर वो ज़रूर सर हिला देती और अपना जवाब देती, थैंक यू। इस पर वे विदेशी मुस्कुराते, आपस में और कुछ कहते। कभी कभार कोई झुककर, कोई लेडी होती तो वो झुककर उसके गाल से गाल मिला देती। कोई बड़ा होता तो उसके कंधे को पकड़ के हिला देता, तो वो इतनी प्यारी लग रही थी। एक दिन एक नौजवान सामने आया, उसने इशारे से कुछ कहा। तोतो चांद को लगा कि वो कहना चाह रहा है कि क्या तुम मेरे साथ इसकी करोगी। उसके पापा ने उसको इजाज़त दे दी, ठीक है जाओ तुम कर सकती हो। तोतो चांद ने उसको उत्तर में थैंक यू बोला। मतलब उसने तो इशारा किया था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया था और इसने थैंक यू बोल दिया। अब उस नौजवान ने उसको अपने दोनों पैरों के बीच में बिठाया और तोतो चांद को स्की के अगले हिस्से में बिल्कुल एकदम पकड़ के ज़ोर से वो उकड़ू बनकर बैठ गई। तब वे सबसे लंबी और आसान ढलान पर से नीचे को फिसलने लगे। लगता था मानो वो हवा से तेजी से बातें कर रहे हो। तेजी के कारण कानों में सीटियां भी बजने लगी, पर उसने अपने आप को इतना फोल्ड करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था कि उसके घुटनों के जोर से भींच कर बैठी थी ताकि वह आगे को ना गिर सके। जब वो नीचे पहुंचे ढलान से तो सारे दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सारे उनका वेलकम किए। तो चांद ने सबको थैंक यू बोला। वह तो चांद को काफ़ी बाद में पता चला था फिर कि वो जो नौजवान था वो स्नाइडर था। वह विश्वविद्यालय का विख्यात स्कीयर था और हमेशा चांदी की बनी स्की की छड़ियां इस्तेमाल करता था। उस दिन जो बात उसे अच्छी लगी थी वह कुछ दूसरी ही थी। जब वे ढलान पार कर नीचे पहुंचे और लोग तालियों से उनका स्वागत कर चुके, तो वह झुक कर तोतो चांद के पास बैठ गया। उसने तोतो चांद का हाथ अपने हाथों में थामा और तब उसने भी तोतो चांद को थैंक यू कहा। उसको ऐसा लगा तोतो चांद को कि मानो वो भी कोई बड़ी महिला हो। जब वह नीचे झुका था तभी तोतो चांद को लगा कि वो कितना अच्छा व्यक्ति है कि एक छोटी बच्ची की भी वो रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये बात तोतो चांद को भा गई। उसको स्की करने से ज़्यादा, उस एडवेंचर से ज़्यादा जो ये व्यवहार था उस व्यक्ति का, बिहेवियर था तोतो चान के प्रति, उसके प्रति जो रिस्पेक्ट था, सम्मान था, वो उसको बहुत अच्छा लगा। तोतो चान को लगा कि मैं उससे उम्र में कितनी छोटी हूँ और वो विश्व का कितना फेमस व्यक्ति है, पर फिर भी वो मेरे साथ इतना अच्छे से, इतने सॉफ्टनेस और पोलाइटनेस से बातें कर रहा है, मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है। वो तोतो चान को बहुत अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, हम सबको शायद बहुत कुछ भूल जाता है, लेकिन जब कोई हमारे साथ कैसा बिहेव किया या व्यवहार किया, वो हमेशा हमको याद रहता है। तो उस बच्ची के मन में जो वो व्यवहार था, वो उसका बिहेवियर, वो ऐसा छप गया और ऐसा छू गया कि जब उसने ये किताब लिखी तो उसको वो अभी भी याद रहा। दोस्तों, जब स्कूल की छुट्टियां तोतो चांद की ख़त्म हुई, तो उन्होंने एक नई चीज़ पाई स्कूल में, और वो नई चीज़ थी लाइब्रेरी, पुस्तकालय। उस स्कूल में आप तो जानते ही हैं कि रेलगाड़ी के डिब्बे यूज़ किए जाते थे क्लासरूम के लिए, तो पुस्तकालय के लिए भी रेलगाड़ी का एक नया डिब्बा आ चुका था स्कूल में, और उसको बच्चे नहीं थे तभी उसको पुस्तकालय में बदला जा चुका था। स्कूल के चौकीदार जो राव चांद जी थे, वो इस चीज़ में बड़े माहिर थे, रेल गाड़ी के डिब्बों को मॉडिफाई करना, उसको सुंदर बनाना वो आराम से कर लेते थे। उस रेलगाड़ी के डिब्बे में कुर्सियाँ भी थी, मेज भी थी, और बहुत सारी किताबें थी बच्चों के पढ़ने के लिए। जैसे ही स्कूल में पहले दिन छुट्टियों के बाद बच्चे पहुँचे, तो हेडमास्टर जी ने उनको वेलकम किया और कहा, ये है तुम्हारा नया पुस्तकालय, कोई भी बच्चा किसी भी किताब को पढ़ सकता है। यह मत सोचना कि कुछ किताबें किसी क्लास के लिए ही अलग की गई हैं, ऐसा नहीं है। आप जिस किताब को पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। बच्चे बड़े एक्साइटेड हुए, सब बहुत खुश हुए। मास्टर जी ने कहा कि देखो, आप घर ले जाना चाहो तो भी ले जाना, लेकिन याद से और सही सलामत किताब को वापस लाके भी रखना। और हाँ, अगर आपके घर में ऐसी कोई किताब है जो आप नहीं पढ़ते हो और किसी दूसरे को पढ़ाना चाहते हो, तो वो भी यहाँ लाकर रख सकते हो, तो वो भी लेकर आना, और इस पुस्तकालय में और भी किताबों को रखकर उसको सजाना। बच्चे बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा हम आज ही और अभी इस पुस्तकालय में पढ़ेंगे। सभी बड़े खुश, हेडमास्टर जी को भी बड़ा अच्छा लगा, बच्चों का उत्साह देखकर वो खुश हो गए, और उन्होंने बोला तो ठीक है, ऐसा ही करो आज। इसके बाद तो मोए के सारे बच्चे, 50 के 50 बच्चे एक साथ पुस्तकालय वाली रेल डिब्बे में घुस गए, और सारे कोई ना कोई किताब लेकर पढ़ना शुरू कर दिए। डिब्बे में अब ऐसी भीड़ हो गई कि मानो वो सच का रेलगाड़ी का डिब्बा बन चुका हो। कोई खड़ा है, कोई बैठा है, तो बस सबके हाथ में किताब थी। कुछ बच्चों को पढ़ना समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने चित्र वाली किताबें उठा ली थी। बस अचानक से सब डिब्बे में एक एक किताब उठाकर चुपचाप कोई खड़ा कोई बैठा पढ़ने लगा, और डिब्बे में शांति सी छा गई। बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों को। कुछ बच्चे ज़ोर से पढ़ रहे थे, तो कुछ बच्चे हंसी और खिलखिलाहट से देख रहे थे, किताबों के चित्रों को देखकर आनंद उठा रहे थे। उनकी इस खिलखिलाहट से रेल का डिब्बा गूंज उठा। एक बच्चे ने तो एक किताब उठाई और उसमें बने चेहरे को, तुकबंदी जिसमें लिखा हुआ था, राइम्स लिखे हुए थे, उसको भी पढ़ने लगे ज़ोर ज़ोर से। तो मोए में अलग अलग विषयों पर बच्चों को अपनी तरीके से काम करने की आज़ादी थी। ऐसे में अगर बच्चे एक दूसरे के लिए बाधा पैदा करते भी, तो यह भी अजीब ही बात होती। असल में उन्हें कुछ यूँ प्रशिक्षित किया जाता था कि वो अपना काम पूरी तन्मयता से करें, आसपास चाहे कुछ भी होता रहे, वो सब अपने काम में फोकस्ड हुआ करते थे। तोतो चान की किताब में एक जापानी लोक कथा थी, वो बड़ी अजीब थी और बहुत ही फनी थी। तोतो चान को बड़ा मज़ा आया उसे पढ़कर। उसमें था कि एक अमीर माँ बाप होते हैं, उनकी एक बच्ची होती है, उसकी शादी नहीं हो रही होती है। क्यों नहीं शादी हो रही होती है? क्योंकि उस बच्ची, उस लड़की को कोई प्रॉब्लम होती है, और उस प्रॉब्लम की वजह से कोई दुल्हा उसे नहीं मिलता। आखिरकार एक दुल्हा मिल जाता है कभी, और जिस दिन उनकी वेडिंग नाइट होती है, उस दिन वो जो दुल्हन होती है उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये होती कि वो बहुत ज़ोर से फाइट करती थी, तो उस फाइट की वजह से उसकी शादी नहीं होती थी। अब इस बार जब उसने शादी हो गई और जब उनकी वेडिंग नाइट हुई तो इतनी ज़ोर से फाइट किया कि वो जो दूल्हा था वो बिस्तर से लुढ़क के गिर गया और चक्कर लगाने लगा गोल 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 गोल। सब तो चांद को ये पढ़कर और इसकी कल्पना करके बड़ा मज़ा आया, उसमें जो चित्र बना था वो भी उसको बड़ा मज़ा आया। अब हर बच्चा उस किताब को पढ़ना चाहता था, उस किताब की बड़ी डिमांड होने लगी कि हम भी पढ़ेंगे हम भी पढ़ेंगे। पूरे स्कूल के बच्चे रेल के डिब्बे में यूं भरे थे मानो किसी टीन के डिब्बे में कोई मछली ठूस ठूस कर भर दी गई हो। लेकिन सभी मगन थे किताब पढ़ने पर, कोई बच्चे भी क्लास में जाकर पढ़ना नहीं चाहते थे। वह पूरा दिन बच्चों ने पुस्तकालय में ही बिताया। इसके बाद अन्य अवसरों पर तथा जब भी बच्चे बरसात की वजह से टहलने ना जा पाते तो सबको पुस्तकालय में बिठा दिया जाता था, और अब पुस्तकालय उन सबका एक चहेता अड्डा बन गया था। जब जिसको बोरी लगता वो पुस्तकालय, किसी को क्लासरूम अच्छा नहीं लग रहा पुस्तकालय, पढ़ने में ये सब्जेक्ट मन नहीं कर रहा तो पुस्तकालय। तो उनके लिए पुस्तकालय एक उनके जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया था जहाँ वो अपना अच्छा वक्त बिताना पसंद करते थे। तो उम्मीद है दोस्तों ये किस्से आपको ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे। तो चांद के अगला किस्सा बहुत जल्दी पेश होगा।